जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भगवद गीता की जय गौर निताई की जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर शरीर से रहिए व्यस्त और आत्मा से रहिए मस्त हरिनाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ जय श्री कृष्ण न शस्त्र पर न शास्त्र पर न धन पर न ही किसी युक्ति पर हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर हरि हरि बोल एवरीवन हरि हरि बोल जय श्री राधे कृष्णा। तो फ्रेंड्स आज के सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और जो हम लोगों को पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप सबको पता है कि हम सब अपनी आध्यात्मिक यात्रा की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं और इस प्रक्रिया में सरल भगवद गीता का कोर्स भी आरंभ कर चुके हैं, है ना, जो कि एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है हमारी आध्यात्मिक यात्रा में। परमात्मा की अपार कृपा है, सौभाग्य है हमारे जीवन का कि भगवद गीता हमारे जीवन में आई, भगवान कृष्णा हमारे जीवन में आए। तो आज हम भगवद गीता स्टार्ट करने वाले हैं, तो आइए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्णा का आह्वान करते हैं कि भगवान हमारी बुद्धि में विराजमान हो, अपनी विशेष कृपा हम पर बरसाएं ताकि हम सब कुछ प्राणी उनकी वाणी को उनकी इंस्ट्रक्शंस को उनके गीत को समझने के योग्य बन सकें और अपने जीवन में उनकी लर्निंग्स को अपना पाएं। तो फाइनली फ्रेंड्स आज हम भगवद गीता स्टार्ट करने वाले हैं। भगवद गीता सभी वैदिक ग्रंथों का सार है, है ना। भगवद गीता का मतलब सिंपल शब्दों में भगवान श्री कृष्ण द्वारा गाया गया गीत है जिसको श्रीमद् भगवद गीता कहा जाता है। इस दिव्य गीत को भगवान श्री कृष्ण ने मोक्षदा एकादशी के दिन 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन को सुनाया था। भगवद गीता महाभारत ग्रंथ का हिस्सा है, है ना, और इसकी रचना महर्षि वेद व्यास जी ने की और उन्हीं के निर्देशानुसार श्री गणेश जी ने इसे लिखा। तो 5000 वर्ष पूर्व जो भगवान ने जो दिव्य गीत गाया वो इतना डीप सॉन्ग है कि अभी भी उसकी उतनी ही इम्पोर्टेंस है। मतलब डीप सॉन्ग है, अमृतमय गीत था जो भगवान ने गाया और इसी गीत को श्रीमद् भगवद गीता कहा जाता है। और इसमें फ्रेंड्स 700 श्लोक है और इसको 18 अध्यायों में बांटा गया है। 18 चैप्टर पढ़ने वाले हम, है ना, और उसमें 700 वर्सेस है। इनमें से 574 वर्सेस भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं, 84 वर्सेस अर्जुन ने कहे हैं, 41 वर्सेस संजय ने कहे और भगवद गीता का पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा है। सिर्फ एक ही श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा है, पहले चैप्टर का पहला श्लोक। तो इस प्रकार ये हो गए 700 वर्सेस। तो फर्स्ट चैप्टर जो भगवद गीता का है वो पूरे भगवद गीता का जो पूरा सीन सेट हो रहा है ना उसके बारे में, सेटिंग ऑफ द सीन, है ना। इसमें भगवान एक सीन सेट कर रहे हैं कि अब इसमें अर्जुन को कंफ्यूज किया जाए ताकि अर्जुन एक रोल प्ले कर सके कंफ्यूज ह्यूमन बींग्स की तरह, है ना, ताकि वो परफेक्ट क्वेश्चन पूछ सके भगवान से। हम सब कंफ्यूज ह्यूमन बींग्स के बिहाफ पर, हम कंफ्यूज रहते हैं ना अपनी लाइफ में, है ना, तो हम सब के बिहाफ पर अर्जुन क्वेश्चन पूछ सके, एक ऐसा रोल प्ले कर रहा है अर्जुन, है ना, और फिर भगवान परफेक्ट आंसर्स दे सके क्योंकि भगवान ही परफेक्ट है, है ना। तो भगवद गीता एक परफेक्ट क्वेश्चन और एक परफेक्ट आंसर बुक है। तो वो परफेक्ट क्वेश्चन को पूछने के लिए चैप्टर 1 वो भूमिका बना रही है जहां पे युद्ध होने वाला है, वो भूमिका बना रहा है चैप्टर 1 जहां पे युद्ध होने वाला है। फिर सेकंड चैप्टर में भगवद गीता का कंटेंट कैसे चलने वाला है उसका एक क्विक रिव्यू है, क्या क्या होने वाला है आगे, कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या बातें होंगी, है ना, उसका एक क्विक रिव्यू है। थर्ड चैप्टर टू फिफ्थ चैप्टर में कर्मयोग और ज्ञान योग की चर्चा होती है। सिक्स चैप्टर में ध्यान योग अष्टांग योग के बारे में बात होगी, है ना, इसमें ये टिप्स आते हैं कि जो ध्यान योग और अष्टांग योग के जो योगी है उनको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। फिर 7-12 में भक्ति योग आता है, है ना, भक्ति योग के चैप्टर्स आते हैं। देन 13-17 आता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मीन्स ज्ञान योग, है ना, और लास्ट 18 चैप्टर है कंक्लूजन का। तो इस तरह से हम भगवद गीता का अध्ययन करेंगे, है ना। इसमें थोड़ा सा हम ये युद्ध क्यों हुआ था महाभारत का, है ना, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में हम समझेंगे, थोड़ा सा क्विक रिव्यू देने वाली हूँ मैं कि महाभारत में ऐसा क्या हुआ कि ये महाभारत का युद्ध होना तय हुआ है ना। पांडवों के सबसे बड़े भाई थे युधिष्ठिर, है ना। तो एक बार द्यूत क्रीड़ा हुई, गैम्बलिंग बोलते हैं इंग्लिश में तो, लेकिन हिंदी में द्यूत क्रीड़ा बोलते हैं, है ना। तो जब पांडव और कौरवों के बीच में वो द्यूत क्रीड़ा चल रही थी, तो युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा में छल पूर्वक हराने के बाद कौरवों ने पांडवों को 12 वर्ष का वनवास दिया और 1 वर्ष का अज्ञातवास दे दिया। लेकिन 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगने के बाद भी जब वो वापिस आए, है ना, और प्रतिज्ञा के अनुसार पांडवों ने जब अपना आधा राज्य मांगा कौरवों से, तो दुर्योधन ने क्या कहा कि मैं तुम्हें सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा, है ना। और उसने चैलेंज किया कि तुम, है ना, युद्ध करो पहले। तो इसलिए पांडवों ने अपनी माता कुंती की आज्ञा अनुसार युद्ध करना स्वीकार किया। तो इस प्रकार पांडवों और कौरवों का युद्ध होना फाइनल हुआ। देखो, जो कौरवों के पिता थे धृतराष्ट्र, वो जन्म से अंधे थे और महर्षि वेदव्यास की उनमें प्रेम भाव था धृतराष्ट्र के प्रति। तो महर्षि वेदव्यास जी ने धृतराष्ट्र को कहा कि युद्ध तो अब कोई टाल नहीं सकता, कुछ भी हो जाए अब ये युद्ध होने ही वाला है। तो यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो, क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, जिससे कि तुम घर बैठे बैठे युद्ध देख सकते हो, है ना। लेकिन धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं तो जन्म भर अंधा रहा, बचपन से वो अंधे थे, है ना, तो मैं अब अपने कुल के सार को देखना नहीं चाहता, लेकिन युद्ध कैसे हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है ना, ये जरूर मैं सुनना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, है ना। तब महर्षि व्यास जी ने कहा कि मैं फिर, जो कि संजय उनके मंत्री थे धृतराष्ट्र के, है ना, तो व्यास जी ने कहा कि मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे ये संपूर्ण युद्ध को, वहां सारी जो भी चीजें हो रही हैं, घटनाएं जो भी हो रही हैं, है ना, क्या बातें कर रहे हैं वो, ये सारी बातों को, सारी घटनाओं को देखकर सुनकर तुम्हें भी सुना देगा। तो ये कहकर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। हाँ जी, ममता जी पढ़ लो, पहला वर्स, पहला श्लोक भगवद गीता फर्स्ट चैप्टर पढ़ लो। हरि बोल।
हरी हरी बोल एवरीवन। अध्याय 1 श्लोक नंबर 1। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि युद्ध के इच्छुक मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र होकर क्या किया। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि युद्ध के इच्छुक मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र होकर क्या किया। हरी हरी बोल जी।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। तो पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा है, धृतराष्ट्र संजय से कह रहे हैं, है ना। तो धृतराष्ट्र संजय से छोटी बड़ी घटनाओं को जानने के लिए प्रश्न कर रहे हैं। धृतराष्ट्र महाभारत के मुख्य पात्रों में से एक है। धृतराष्ट्र राजा विचित्र वीर्य और रानी अंबिका के पुत्र थे और कुरु वंश के वंशज थे, है ना, कुरु वंश के राजा थे उस समय। धृतराष्ट्र कौरवों के पिता थे और पांडु और विदुर के बड़े भाई भी थे। देखो, धृतराष्ट्र का अर्थ है धृत प्लस राष्ट्र। धृत का अर्थ है कसकर पकड़ कर रखना और राष्ट्र का अर्थ है राज्य साम्राज्य, मीन्स राज्य को पकड़ कर रखना। मतलब देखो, धृतराष्ट्र, आपको बताया मैंने, जन्म से ही अंधे पैदा हुए थे, है ना, जिसके कारण उनके छोटे भाई पांडु को राजा बनाया गया। अंधे होने के कारण वे राज्य के कार्यों का संचालन नहीं कर सकते थे, लेकिन ये बात उनको कभी भी पसंद नहीं आई। इतना कुछ होने के बावजूद उनमें एक कमी थी, उनको अपने पुत्रों से, दुर्योधन से अत्यंत मोह था, आसक्ति थी, एक्सट्रीम एक्सेसिव अटैचमेंट्स थी, जिसके कारण उन्होंने कभी भी पांडवों के साथ न्याय नहीं किया और इस कारण महाभारत के महायुद्ध की ओर लगातार बढ़ते गए, है ना। उनका विचार था कि उनके पुत्र ही, कौरव ही कुरु वंश के वंशज बनने के योग्य है, कुरु वंश के राजा बनने के योग्य है, इसलिए उन्होंने पांडवों को कभी भी न्याय नहीं दिया। तो धृतराष्ट्र का प्रेम मोह, उनके अपने पुत्र दुर्योधन के साथ होना उनके चरित्र की एक खास विशेषता थी। उनके इस प्यार ने, उनके इस मोह ने उनको कभी भी सच्चाई की तरफ, न्याय की तरफ नहीं बढ़ने दिया और महाभारत के महायुद्ध की दिशा की तरफ प्रभावित किया और वो उस महायुद्ध की तरफ बढ़ते जा रहे थे। मैं, मेरे बच्चे, मेरा पैसा, मेरा साम्राज्य, मैं कंट्रोलर हूँ, मैं ही इंजॉयर हूँ। तो धृतराष्ट्र इस मैं की फीलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए धृतराष्ट्र द्वारा ये पहला श्लोक बोला गया है ना। राज्य के सारे अधिकार थे धृतराष्ट्र के पास, बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ थी, सब कुछ था, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद उनमें अहंकार था, मैं का भाव था, एक्सेसिव अटैचमेंट थी अपने राज्य के साथ, अपने बच्चों के साथ, है ना। तो धृतराष्ट्र एक्चुअली एक आम आदमी को, हम लोगों को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए पहला श्लोक धृतराष्ट्र से बुलवाया गया है ना। देखो पहला श्लोक कोई भी बोल सकते थे ना, भगवान कृष्ण का हो सकता था पहला श्लोक, अर्जुन का हो सकता था, है ना। मतलब पहला श्लोक धृतराष्ट्र से बुलाने का एक रीजन है, लर्निंग्स होती हैं फ्रेंड्स, हर श्लोक में लर्निंग्स होती हैं अगर हम उसको लेना चाहें तो। हर श्लोक में आप देखोगे तो भगवान हमें कुछ समझाना चाहते हैं। हम लोग भी यही करते रहते हैं, हमारे घरों में झगड़ों का कलह का कारण ही ये मैं की भावना है। भगवद गीता का हर श्लोक हमें कुछ सिखाता है, सिंबॉलिक मीनिंग है हर श्लोक का, उसको अपनी लाइफ से रिलेट करके समझना है कि कौन सा भाव मेरे मन में रहता है, कौन से नेगेटिविटी से मुझे निकलना है और कौन सी पॉजिटिविटी मेरे अंदर होनी चाहिए, है ना। तो इस तरह से अगर हम चलेंगे ना तो हमें बहुत सारी हमें ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगी, है ना, भगवान की गुड बुक्स में हम आने वाले हैं, है ना। तो ये जो एक्सेसिव अटैचमेंट्स होती हैं अपनों के साथ, पैसे के साथ, है ना, तो ये धृतराष्ट्र एक्चुअली हम लोगों को, एक आम आदमी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है। और क्या कह रहे हैं, पूछ रहे हैं वो संजय से, क्योंकि वो देख नहीं सकते, तो वो संजय को दिव्य दृष्टि मिली है, तो वो पूछ रहे हैं कि युद्ध के इच्छुक मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र होकर क्या कर रहे हैं। देखो धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र क्यों कह रहे हैं, रीजन है इसमें फ्रेंड्स, क्योंकि देखो कुरुक्षेत्र में ना पहले बहुत से देवी देवताओं, बहुत सारे यज्ञ होते थे वहां पे कुरुक्षेत्र में, है ना। राजा कुरु ने भी वहां तपस्या की थी, राजा कुरु कुरु वंश के पौराणिक पूर्वज थे, उन्होंने तपस्या करके, राजा कुरु ने भगवान को खुश किया था और भगवान को खुश करके भगवान से आशीर्वाद लिया था कि कुरुक्षेत्र में वो सफल होंगे। तो यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठान होने के कारण इसको धर्म भूमि कुरुक्षेत्र भी कहा जाता है, राइटिसनेस की भूमि कहा जाता है, धर्म भूमि मतलब राइटिसनेस की भूमि कहा जाता है। इस स्पिरिचुअल एटमोसफेयर के कारण कुरुक्षेत्र की भूमि को क्या कहते हैं, धर्म क्षेत्र या राइटिसनेस भी कहा जाता है। तो धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र उनकी मतलब कुरुवंशियों की भूमि है, और ये केवल युद्ध भूमि नहीं है बल्कि तीर्थ भूमि भी है, जहां जाकर प्राणी पवित्र कर्म करके अपना कल्याण कर सकते हैं, है ना। देखो जब धृतराष्ट्र कह रहे हैं ना कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र, तो उनको ना टेंशन इस बात की है कि जो कुरुक्षेत्र है एक्चुअली वो है तो धर्म क्षेत्र, और उनके जो एंसेस्टर्स थे राजा कुरु, उनको भगवान से ब्लेसिंग्स मिली थी कि जो भी धार्मिक कार्य होंगे वहां पर सफल होंगे, है ना। तब उनको ये टेंशन है कि भाई जो कुरुक्षेत्र है वो है तो धर्म क्षेत्र है ना, और उनको अंदर से तो पता है कि भाई धर्म तो पांडवों के साथ है। देखो अंदर से तो हमें सब पता होता है ना, तो उनको भी पता है कि भाई धर्म तो पांडवों के पास है, है ना, भगवान पांडवों के साथ है, इसलिए धृतराष्ट्र को टेंशन हो रही है, चिंता हो रही है, उनको पता है जीत कहीं ना कहीं पांडवों की होगी, तो मेरे बच्चों को क्या होगा, इसलिए वो घबरा रहे हैं, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ जो भी कार्य होगा तो जीत धर्म की ही होगी और वो सफल होगा, है ना। और हमारे सनातन धर्म की विशेषता है कि कोई भी कार्य करना हो तो वो धर्म को सामने रखकर ही होता है, चाहे युद्ध ही क्यों ना हो, युद्ध भी धर्म भूमि तीर्थ भूमि में करते हैं, ताकि युद्ध में जो मरने वाले होते हैं उनका उद्धार हो। देखो दोनों साइड से मरते हैं जब युद्ध होता है तो, है ना, तो इसलिए किसी धर्म भूमि में किया जाता है, तीर्थ भूमि में करते हैं, ताकि मरने वालों का उद्धार हो, कल्याण हो जाए उनका, इसलिए यहाँ कुरुक्षेत्र के साथ धर्म क्षेत्र शब्द आया है, है ना। तो हम सबको भी ये शिक्षा लेनी चाहिए इस श्लोक से कि कोई भी काम करना तो धर्म को सामने रखकर ही करना चाहिए, सही टाइम पे सही कर्म करना, है ना। धर्म मतलब राइटिसनेस, सही चीजें करना, भगवान खुश हो जाए मेरे इस काम से, इस भाव से करना, सिर्फ अपना और अपनों का ही भला नहीं बल्कि सारी सृष्टि का भला करना, सारी सृष्टि को अपना मानकर सबके हितों के बारे में सोचना, केवल अपना सुख अपना हित ही नहीं सोचना, भगवद गीता के सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन जीना, अपने शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन जीना, है ना। देखो पांडवों की ओर से बहुत बार मनाया गया कौरवों को कि युद्ध ना हो, है ना, क्योंकि युद्ध होता तो दोनों तरफ से हानि होती है ना, है ना,
धन की भी हानि होती है और जान की भी हानि होती है ना। और भगवान कृष्ण द्वारा हस्तिनापुर आने पर बार बार संधि प्रस्ताव रखने पर भी दुर्योधन ने संधि करना स्वीकार नहीं किया। जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप सिर्फ 5 गांव दे दो पांडवों को तो मैं उनको मना लूंगा, और दुर्योधन ने क्या कहा कि मैं सुई की नोक जितनी जमीन भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा, है ना। तब मजबूरी से पांडवों ने युद्ध करना स्वीकार किया था, और दोनों सेनाओं ने युद्ध करना स्वीकार किया था ना, तो दोनों सेनाओं में युद्ध की इच्छा रहने पर भी दुर्योधन की इच्छा विशेष रूप से कही गई है, विशेष रूप से थी ना उसकी इच्छा। उस इच्छा के पीछे उसका मुख्य उद्देश्य राज्य प्राप्ति था, मोह था, लोभ था, लालच था, है ना। और राज्य प्राप्ति के लिए वो कुछ भी किसी भी सीमा तक जाता था, चाहे वो अधर्म हो, है ना। इसका कोई प्रयोजन नहीं था कौरवों को, किसी भी तरीके से वो राज्य प्राप्ति करना चाहता था कि मुझे ही राज्य मिलना चाहिए, है ना। तो ये दुर्योधन का कौरवों का भाव था, इसलिए युद्ध की इच्छा विशेष रूप से कौरवों की थी। पांडवों में फ्रेंड्स धर्म मुख्य तत्व था, उनका भाव था हम चाहे जैसा जीवन जिएंगे पर धर्म के अनुसार जिएंगे, एथिकली अपना जीवन परफॉर्म करेंगे। अपने शास्त्रों को पढ़ के भगवान जब जीवन में आते हैं तो अंदर ये बात बैठ जाती है ना। और पांडव तो एथिकली बचपन से जीवन जिया है उन्होंने, भगवान कृष्ण उनके बचपन से उनके मित्र थे, है ना। तो उनका ये भाव था बचपन से ही कि हम जैसा भी जीवन जिएंगे पर धर्म के अनुसार ही चलेंगे, एथिकली अपना जीवन जिएंगे, धर्म के विपरीत कभी नहीं जाएंगे। और पांडव धृतराष्ट्र को पिता के बड़े भाई होने के कारण पिता के समान ही समझते थे। उनके अपने पिता की तो जल्दी डेथ हो गई थी जब वो छोटे थे, पांडु की बहुत जल्दी डेथ हो गई थी, है ना। तो उन्होंने तो धृतराष्ट्र को ही अपना पिता माना, उनकी हर उचित अनुचित बात वो मानते थे, उनकी हर आज्ञा का वो पालन करते थे। लेकिन धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों में तथा पांडु पुत्रों में समान भाव नहीं था, उनमें पक्षपात था, अपने पुत्रों के प्रति मोह था, एक्सेसिव अटैचमेंट्स थी, है ना। देखो फ्रेंड्स वैसे तो सभी बच्चे एक ही कुरुवंश के हैं, और जो राजा होता है उसके लिए तो सारे बच्चे ही, सारी प्रजा के बच्चे ही उसके अपने हैं ना। लेकिन उसने तो अपने भाई के बच्चों को ही अपना नहीं माना। तो प्रश्न तो ये होना चाहिए था इस श्लोक में कि युद्ध भूमि में क्या हुआ, और राजा का कर्तव्य है, मतलब घर के बड़े व्यक्ति का कर्तव्य होता है ना कि वो पार्शियलिटी ना करे, है ना। तो यहाँ पर बैड लीडर का भी एग्जाम्पल दिखता है। और उनका प्रश्न क्या था श्लोक में देखो, श्लोक खोलो, व्हाट्सएप पे भेजा है मैंने, वो क्या प्रश्न पूछ रहे हैं कि युद्ध में मेरे पुत्र और पांडु पुत्रों ने क्या किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि कुरुवंश के वंशज क्या कर रहे हैं या सब क्या कर रहे हैं, सभी बच्चे एक ही कुरुवंश के हैं ना। तो उन्होंने स्पेसिफाई किया कि युद्ध में मेरे पुत्र और पांडु पुत्रों ने क्या किया। विशेष बात यह है कि देखो उन्होंने श्लोक में अपने पुत्रों के लिए मेरे पुत्र और पांडवों के लिए पांडु के पुत्रों से संबोधन किया। क्योंकि फ्रेंड देखो हम जितनी भी कोशिश कर लेना, हम अपने भावों को छुपा नहीं सकते। फ्रेंड्स हम कितनी भी कोशिश कर ले हम अपने अंदर के भावों को छुपा नहीं सकते, वो वाइब्रेशंस जाती हैं, है ना। अगर हम बोलते नहीं हैं कुछ टाइम तक, मान लो हम बोल नहीं रहे हैं कुछ भी, तो वो वाइब्रेशंस वो जाती हैं। और जो अंदर भाव होते हैं ना हमारे, एक ना एक दिन फ्रेंड्स वो ही हमारी वाणी से बाहर निकल भी जाते हैं। इस द्वेषी भाव के कारण ही धृतराष्ट्र को अपने कुल के संहार का दुख भोगना पड़ा। ये द्वेषी भाव ही महाभारत के महान युद्ध का कारण बना। ये मेरे बच्चे, ये तेरे बच्चे, हम भी इसमें उलझे होते हैं ना, ये मेरा, ये तुम्हारा, ये मेरे बच्चे, ये मेरी फैमिली, ये मेरा पड़ोसी, ये मेरा देश, ये मेरा कास्ट, मैं महाजन हूँ तो ये मैं महाजन हूँ, मैं शर्मा हूँ तो ये मैं शर्मा हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं इंडियन हूँ। हम भी इसी द्वेष भाव में उलझे हुए हैं फ्रेंड्स। हमारे दुख का कारण है ये छोटी छोटी बातें जो हम डीपली सोचे ना, ये छोटी छोटी बातें है, छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी बातें हैं फ्रेंड्स, है ना। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें मैं और मेरे के भाव से बाहर निकलना है ना। देखो धृतराष्ट्र के मन में द्वेषी भाव था कि दुर्योधन आदि मेरे पुत्र हैं और युधिष्ठिर आदि मेरे पुत्र नहीं है। तो इस भाव के कारण दुर्योधन का भीम को जहर देना, अब आपने महाभारत देखी होगी तो उसमें था ये सारी चीजें, है ना। लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का प्रयत्न करना, युधिष्ठिर के साथ छल पूर्वक जुआ खेलना आदि अनेकों कार्य हैं जो दुर्योधन ने किए, और दुर्योधन को कभी भी धृतराष्ट्र ने मना नहीं किया। और उसका कारण था, उसमें धृतराष्ट्र का ये भाव था कि पांडवों का नाश हो जाए और मेरे बच्चों को सारा राज्य मिल जाए। तो देख लो फिर क्या हुआ उसके साथ, धृतराष्ट्र के साथ, है ना। तो हमें ये शिक्षा लेनी है इससे, इस श्लोक से, कि हमें मैं और मेरे के भाव से बाहर निकलना है। ये मैं, ये मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरा मोहल्ला, मेरा शहर, मेरा देश, है ना। ये द्वेष भाव कि ये मेरे अपने हैं, ये पराए हैं, इस भाव से हमें बाहर निकलना है फ्रेंड्स। देखो सारी जो भी चीजें हैं ना, ये भगवान ने नहीं बताई है हमें, हमने खुद ही बनाई है ये सब। हमने अपने आसपास के लोगों को देखा करते हैं तो हम भी फिर ये करने लग जाते हैं, क्योंकि हमें सही डायरेक्शन नहीं होती, हमें सही नॉलेज नहीं होती, हमें करना क्या है, हम इसी ट्रैप में फंसे रहते हैं, मेरे मेरे के चक्कर में घूमते रहते हैं और दुखी रहे ना। आज तक कौन सा सुख मिल गया हमें मेरा मेरा करने से, इतना कुछ इकट्ठा करने में कि कौन सा सुख मिल गया, है ना। और आप सोचिए ज्यादातर इसी भाव के कारण घरों में देशों में कला क्लेश है, आपस में प्रेम स्नेह दया भाव करुणा ये भाव ही खत्म हो रहे हैं, है ना। मैं और मेरे की वजह से कला क्लेश है और कुछ है ही नहीं। और भगवान ने कितनी अच्छी व्यवस्था बनाई हुई है, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही जाना है, बस इसके बीच के जीवन को अच्छे से प्यार से एथिकली जीना है, धर्म के साथ जीना है, भगवान के साथ मिलकर जीना है, भगवान को जीवन में उतार कर जीना है, भगवान के साथ गाइडेंस के साथ जीना है, भगवान की गुड बुक्स में आना है। भगवान हमारे टीचर है, है ना, भगवद गीता का ज्ञान दिया हमें तो हमें भी उनका बेस्ट स्टूडेंट बनना है। और धृतराष्ट्र के इस भाव के कारण, मेरे पुत्र पांडु के पुत्र, इस भाव के कारण राग द्वेष उत्पन्न हुए, जिससे क्या हुआ, अल्टीमेट ये महान युद्ध हुआ। और इस भाव के कारण 100 के 100 कौरव मारे गए पर पांडव एक भी नहीं मारे गए, है ना। तो भावार्थ ये है कि धृतराष्ट्र के मन के भाव से महाभारत का युद्ध हुआ, और अर्जुन के मन के भाव से जब उनमें प्रेम उत्पन्न होता है, करुणा उत्पन्न हुई, है ना, जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो, है ना, मैं देखना चाहता हूँ दूसरी सेना को, कौरवी सेना को मैं देखना चाहता हूँ, उनके सब लोगों को मैं देखना चाहता हूँ, है ना। जब उनको देखकर उनके अंदर प्रेम उमड़ता है, वो डरते नहीं है, वो प्रेम उमड़ता है उनके अंदर, करुणा उमड़ती है, इनके बिना मैं कैसे जी पाऊंगा। तो ये प्रेम जब करुणा ये वाले मन के भाव उनके उद्गार हुए ना, जब वो कंफ्यूज हो जाते हैं डिप्रेस हो जाते हैं कि कृष्णा मुझसे नहीं होगा, उनको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं मैं इस सिचुएशन में, उनको लगता है कि ये सही नहीं है, मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, है ना। तो जब उनमें ऐसे मन के भाव उनके प्रकट होते हैं ना, तब क्या होता है, श्रीमद् भगवत गीता का जन्म होता है फ्रेंड्स, प्रकट होती है श्रीमद् भगवत गीता, जिनमें ये डिवाइन क्वालिटीज होती है ना फ्रेंड्स, उनके लिए होती है श्रीमद् भगवत गीता। अर्जुन एक बार भी नहीं कहते कि अगर मैं मर गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, अर्जुन को ऐसा कोई भय नहीं था, अर्जुन को तो पूर्ण विश्वास था कि जीतूंगा तो मैं ही, है ना, उनको पूर्ण विश्वास था क्योंकि भगवान उसकी साइड थे, उसको पता था कि जीत तो उनकी ही होगी। अर्जुन डर गया वो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए डर रहा है ना, वीक हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं। अर्जुन कोई हमारे जैसा आम इंसान थोड़ी है फ्रेंड्स, महान बल है अर्जुन में, महान बल ही है, लेकिन बलवान होने पर भी निर्बल लोगों पे उन पे एक दया का भाव रखते हैं, अपने बल का प्रयोग अपने हितों अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए नहीं करते, है ना। तो ऐसा मन जब किसी का होता है ना, ऐसा भाव जब किसी का होता है ना, तब उसको और ऊंचाई पर लेकर जाने के लिए भगवत गीता जीवन में आती है फ्रेंड्स, है ना। हम कहते हैं ना कि अर्जुन मोहग्रस्त हो गया था, है ना, ये देखना बहुत आसान है, लेकिन आप ये देखो, ये ऑब्जर्व करो कि अर्जुन को राज्य का विजय का कोई मोह नहीं है, उसको नहीं चाहिए कोई पैसा, कोई आराम कंफर्टेबल लाइफ, कोई मान सम्मान, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको कोई लालच नहीं है। अर्जुन को मोह है तो फ्रेंड्स अपनों की प्राण रक्षा का, है ना, स्वजनों के प्रति मोह है उसका, लेकिन राज्य के प्रति पैसे के प्रति डिटैचमेंट अनासक्ति है। ये देखो, ये ऑब्जर्व करो, हम बड़े आसानी से बोल देते हैं ना कि अर्जुन तो मोह में आ गया, अपनों की मृत्यु का मोह था उसको फ्रेंड्स, डर गया था वो कि ये नहीं होंगे तो मैं कैसे जीऊंगा, लेकिन राज्य के प्रति अपने पैसे के प्रति उसमें डिटैचमेंट है, अनासक्ति है। वो देखो, वो ऑब्जर्व करो, यही बातें, यही जो उनका नेचर है, यही जो उनका भाव है, उनको भगवद गीता का सुयोग्य पात्र बनाती है, भगवद गीता का बेस्ट स्टूडेंट बनाती है। और धृतराष्ट्र का चरित्र हमने समझा, है ना, धृतराष्ट्र का चरित्र महाभारत के गहरे संदेश को समझने में मदद करता है फ्रेंड्स, डीप मीनिंग है। हमने धृतराष्ट्र की कुछ क्वालिटीज हमने टच की, है ना, कैसा नेचर था उनका, कौन से भाव थे उनके पांडवों के लिए, है ना। तो धृतराष्ट्र का चरित्र महाभारत के डीप मीनिंग को समझने में मदद करती है। धृतराष्ट्र के चरित्र से हमें ये प्रेरणा मिलती है फ्रेंड्स कि हमें हमेशा धर्म और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए, धर्म मतलब राइटिसनेस की तरफ हमारा मार्ग होना चाहिए, जो सही है वो करना, ये नहीं कि ये चीजें मेरे अपनों के लिए सही है, मेरे लिए सही है तो वो सही हो गया, ऐसा नहीं होता। जो भगवान की नजरों में चीजें सही है हमें वो करना, सही निर्णय लेने हैं धर्म और न्याय के बेस पर। उनके चरित्र से हमें ये भी प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य का कर्म ही उसकी सही पहचान है और उसके द्वारा ही हमारी डेस्टिनी बनती है, हमारा भविष्य बनता है ना। एक श्लोक और हम पढ़ लेंगे उनता जी, पढ़ लो एक और श्लोक। हरि बोल।
हरी हरी बोल। श्लोक नंबर 2। संजय ने कहा, पांडव सेना का निरीक्षण करने के बाद राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से बोले। संजय ने कहा, पांडव सेना का निरीक्षण करने के बाद राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से बोले। हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच ममता जी। तो ये भगवद गीता का सेकंड श्लोक है। पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया था, वो जानना चाहते थे, सुनना चाहते थे कि युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है ना, कि युद्ध की इच्छा वाले मेरे पुत्रों ने और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। संजय जो कि धृतराष्ट्र के मंत्री थे फ्रेंड्स, है ना, और बहुत ज्ञानी व धर्मात्मा व्यक्ति थे, तो इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को युद्ध के दृश्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने गुरु द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। देखो फ्रेंड, दुर्योधन अहंकारी सोच को रिप्रेजेंट करता है। जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता, कैसे वो बाहर से तो बड़ा स्ट्रॉन्ग होने का दिखावा करता है, उसको तो लगता है कि मैं तो जीत ही जाऊंगा। लेकिन जब दोनों तरफ की सेनाएं खड़ी हुई फ्रेंड्स, तो दुर्योधन ने पांडवों की युद्ध की व्यू रचना देखी तो कहीं ना कहीं उसको अंदर से भय लगा, अंदर से वो डर गया। बहुत बड़ी सेना थी फ्रेंड्स कौरवों की, है ना, और पांडवों की सेना तो बहुत ही छोटी सेना थी, लेकिन पांडवों की सेना बड़ी ही शक्तिशाली और सुचारू रूप से एक ही भाव से खड़ी थी, कॉन्फिडेंट खड़े थे सब लोग, सारे सैनिक और सारे योद्धा। भावार्थ ये है फ्रेंड कि उनके पक्ष में स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, धर्म था उनके पक्ष में, है ना। क्योंकि फ्रेंड देखो, सिंपल बात है, ईश्वर की शरण ग्रहण करने वालों को कभी भी किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वो कितने भी मुश्किल में क्यों ना हो, है ना। जो लोग भगवान की शरण में रहते हैं, भगवान के रास्ते पर चलते हैं, भगवान की कृपा से उन्हें ही निर्भयता मिलती है, अभेदान मिलता है उनको, अंदर से जो डर होते हैं ना, भय होते हैं, सब निकल जाते हैं, है ना। और जो लोग भगवान की छत्र छाया में रहते हैं, उन्हें ही तो डर लगना खत्म होगा ना, अदरवाइज संसारिक जीवन में हम लोग डरे रहते हैं, पास्ट और फ्यूचर की चिंताओं में घिरे रहते हैं, कंपैरिजन में फंसे रहेंगे, लालच में फंसे रहते हैं, है ना, अटैचमेंट्स है अलग अलग प्रकार की, उसमें फंसे रहते हैं, डरे रहते हैं, है ना। तो जिसके पक्ष में स्वयं भगवान हो, उस पक्ष का ऑब्वियसली फ्रेंड्स प्रभाव पड़ता है दूसरों पर, और उसका प्रभाव दुर्योधन पर भी पड़ा। पांडवों की सेना कौरवों की सेना से बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी पांडवों की सेना का जो तेज था, प्रभुत्व था, उसके प्रभाव के कारण, उसके तेज के कारण दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर बात करता है, अपने गुरु के पास जाता है, क्योंकि दुर्योधन कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता फ्रेंड्स विजय पाने का, जीतने का। उसको लग रहा था कि जो सिचुएशन को मैं देख रहा हूँ, उस सिचुएशन को, उस स्थिति को द्रोणाचार्य जी भली भांति परखें और उनकी जीत हो। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, घर घर मंदिर हर मन मंदिर, एवरीवन हरी बोल। तो फ्रेंड्स, अब रिव्यूज की तरफ चलते हैं कि आज के सत्संग से आपने क्या सीखा, या आपके कोई एक्सपीरियंसेस है तो आप शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स। हरी बोल।
हरी बोल एवरीवन। श्रीमद् भगवद गीता की जय। मोना जी, आज का सत्संग बहुत ही दिव्य रहा, और आज प्रभु श्री हरि की कृपा से आपने हमें भगवद गीता की फिर से रीडिंग स्टार्ट करवाई है। तो सबसे पहले प्रभु श्री हरि के चरणों में मेरी यही प्रेयर्स हैं कि वो हम सीमित बुद्धि वाले प्राणियों की हेल्प करें, उनकी बुद्धि में आके बैठें, ताकि हम इस दिव्य ज्ञान को समझें और अपनी लाइफ में इसको उतार सके, और हम भी एक मतलब नीति पूर्वक सही रास्ते पर अपने जीवन को आगे ले जा सके। तो मनोज जी, आज के सत्संग में हमने ये समझा कि भगवद गीता, जो कि आज से 5000 वर्ष पूर्व प्रभु श्री हरि द्वारा गाया गया गीत है, और उन्होंने इसे अर्जुन के माध्यम से हम सबको सुनाया है, और ये गीत इतना दिव्य है कि आज भी जब हम इस दिव्य वाणी को सुनते हैं तो हमारी आत्मा तक उनकी आवाज जाती है, और हमारे में जो कमियां हैं, राक्षसी गुण है, अगर हम सीरियसली इस दिव्य ज्ञान को ग्रहण करते हैं तो धीरे धीरे जो है प्रभु श्री हरि की कृपा से कम होते जाते हैं, और हम जो है अपना प्योरिटी की ओर बढ़ने लगते। तो हमने आज ये समझा कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ, तो इसमें भी उस समय जो मतलब कुरु वंश थे, मतलब राजा कुरु
जो थे वो इस भूमि पर यज्ञ करते थे प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, इसलिए इस भूमि को तीर्थ भूमि भी माना जाता था, लड़ाई के लिए ही इसको नहीं माना जाता था। मतलब उस समय जो श्रेष्ठ पुरुष थे, जो भी राजा महाराजा थे, निर्णय लिया युद्ध का, ये भी उन्होंने न्याय संगत लिया, मतलब अपने वैदिक सिस्टम के अनुसार लिया, इसलिए उन्होंने इस भूमि को चुना ताकि जो भी इस युद्ध में मारे जाएंगे, जो कि हमारे अपने ही हैं, ताकि उनका भी कल्याण हो जाए। फर्स्ट श्लोक में भी महाराज जी हमारी यही लर्निंग्स बनी है, जैसे कि आपने धृतराष्ट्र के जीवन के चरित्र का हमें वर्णन करके बताया कि जो धृतराष्ट्र थे वो बहुत ही, मतलब उनकी सोच बहुत लिमिटेड थी, मतलब अपने तक ही सीमित थी, और उनका सबसे बड़ा जो वीक पॉइंट था वो अपने बेटों से उनकी एक्सेसिव अटैचमेंट थी, दुर्योधन से उनका बहुत प्यार था, और वो जो है अपने भाई के पुत्रों के साथ जो है सही न्याय नहीं करते थे। बलिक वो जो पांडव थे वो राजा धृतराष्ट्र को ही अपने पिता के समान मानते थे, परंतु उनके मन में द्वेष था, द्वेष के रास्ते पर चले हुए थे। तो ये महाभारत का युद्ध भी इसी बात को लेकर हुआ, क्योंकि वो धर्म के साथ नहीं थे। तो हमारी इससे ये लर्निंग्स बनी है कि हमें हमेशा जो है धर्म को सामने रखकर अपने वैदिक सिस्टम के अनुसार अपना जीवन जीना है, और ये जो है मेरा तेरा इस भाव से उठकर हमें वासुदेव कुटुम्बकम की भावना को अपने हृदय में लाना है, और जो है ये जो हमारे में मतलब द्वेष भाव है इसको खत्म करना है। तो इसमें हमने ये भी बात समझी, मतलब माता कुंती ने पांडवों को भी इसीलिए युद्ध की आज्ञा दी क्योंकि जो मतलब हस्तिनापुर में यो जो धृतराष्ट्र का जो राज्य कर रहे थे वो भी न्यायपूर्ण नहीं था, क्योंकि दिन ब दिन अत्याचार बढ़ ही रहा, इसलिए उन्हें ये लगा कि इस अवसर में आ गया है कि युद्ध अवश्य ही होना चाहिए ताकि पाप का जो है नाश हो और सही मतलब सही व्यक्ति इस राज्य को संभाले और समाज का कल्याण। और हमने भी यही समझा भगवत गीता में कि हमें भी वही कार्य करने हैं जो कि सबके हित में हो, जो समाज के हित में हो, हमें केवल अपने ही हित को सामने नहीं रखना है। और दूसरे श्लोक में मेरी ये लर्निंग्स बनी है कि दुर्योधन जो है उसकी सेना बहुत बड़ी, परंतु वो इस बात से इस समय अनभिज्ञ था कि प्रभु श्री हरि तो पांडवों के साथ है। तो हमने यहाँ ये बात समझी कि जहाँ प्रभु श्री हरि है वहां विजय निश्चित ही है। तो दुर्योधन को ये लग रहा था कि उसकी सेना जो है बहुत बड़ी है और पांडवों की सेना छोटी है, परंतु फिर भी उसके मन में कहीं ना कहीं भय था, उसे डर था, परंतु पांडवों की सेना बहुत छोटी थी परंतु फिर भी वो निर्भय थे क्योंकि प्रभु उनके साथ। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल,
हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। ब्यूटीफुल रिव्यू दिया नीना जी आपने, बिल्कुल। देखो सिंपल बात है, जब भी हम भगवद गीता पढ़ेंगे ना, है ना, श्लोक के साथ स्टार्ट हो गए हैं, तो जब भी हम कोई वर्स पढ़ते हैं ना, तो ये मत सोचो उनके साथ ये हो रहा है, अच्छे से उसको स्टोरी की तरह मत लो, उसमें ये समझो कि भाई मेरे लिए क्या बताया जा रहा है, इसमें क्या मैसेज दे रहे हैं मुझे भगवान इसमें, है ना। मतलब ये सारी बातें सिंबॉलिक है फ्रेंड्स, कि क्या बता रहे हैं उसमें, है ना। तो हमें सिर्फ अपना मैसेज समझना है कि मेरे लिए क्या मैसेज है, मैंने क्या समझा, मेरे में तो नहीं वो कमियां जो यहाँ पे बताई जा रही है, चाहे वो कमी अर्जुन में हो या धृतराष्ट्र में हो, है ना, या किसी भी महाभारत के किसी भी करेक्टर से हो या रामायण के किसी भी करेक्टर से हो, है ना। तो उसको कंपेयर करना है और फिर उस पर वर्क करना है ना। थैंक यू सो मच नीना जी। हाँ जी, कोई और है जो अपनी लर्निंग शेयर करना चाहता है फ्रेंड्स? हरी बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल एवरीवन। थैंक यू मनादी, थैंक यू सो मच। आपने आज हमारा ये भागवत गीता के श्लोक स्टार्ट किए, ये मेरी थर्ड रीडिंग है, और लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये मेरी फर्स्ट रीडिंग है। क्यों? क्योंकि मुझे हर बार ऐसा लगा कि जैसे मैं कुछ नया सीखने जा रही हूँ। मैं श्री हरि से प्रे करती हूँ कि प्रभु श्री हरि हमारी बुद्धि में विराजे और हमें हमेशा कुछ नया सीखने में हमारी हेल्प करें। और आज आपने जो हमें दो श्लोक करवाए उससे मेरी ये लर्निंग बनी है कि जिस प्रकार कौरवों और पांडवों के लिए कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र था, ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन भी हमारे लिए धर्म क्षेत्र है, और हमें हम अपने सारे कर्म धर्म के अकॉर्डिंग प्रभु को अर्पण करके करने हैं, ताकि प्रभु श्री हरि हमसे खुश हों और उनसे हमारा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बने। हमें हमारे अंदर से मैं का भाव निकालकर सबके लिए समान भाव रखना है। हमारे अंदर से हमें अहंकार निकालकर सबके लिए प्रेम भाव रखना है। हमें किसी को भी कम ज्यादा नहीं आंकना है। हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। ब्यूटीफुल लर्निंग्स, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से आपने दोनों श्लोकों को बहुत अच्छी तरह से और बहुत कम टाइम में आपने पूरा अच्छी तरह समझा दिया, है ना, कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बस इसी तरह से हमें समझते जाना है और ये नहीं सोचना बहुत टाइम है हमारे पास, तो है ना, जो भी चीजें बता रहे हैं ना, बस उसको अपना लो, है ना। उसमें यही समझना है कि भी भगवान की ये गाइडेंस है और इसमें मेरा ही फायदा होने वाला है। जब अपनाओगे ना, जब उस कमी को ओवरकम करोगे ना आप, तो आपको ही मजा आने वाला है, किसी और को नहीं, है ना। थैंक यू सो मच पूजा जी। हाँ जी, कोई और है जो अपनी लर्निंग शेयर करना चाहता है? फ्रेंड्स हरी बोल।
हरी हरी बोल मोना जी, हरी हरी बोल एवरीवन। आज का सत्संग भी बहुत अच्छा था और थैंक यू फिर से लर्निंग स्प्रेड करवाने के लिए। ये मेरी ऑलमोस्ट थर्ड लर्निंग है और थर्ड लर्निंग तो सेम एज पूजा जी, तो ऐसे ही लग रहा है कि नहीं, पहले जो किया उसकी मुला फिर से अब न्यू सीखा कुछ है। तो इसमें मैंने अपनी मिस्टेक पकड़ी है और क्लियर भी कर दी है एज अ स्टेटस। बट यहाँ मैंने यही सीखा आज के ये फर्स्ट और सेकंड श्लोक से कि सोच का दायरा हमें बढ़ाना है, सबको समान दृष्टि से देखना है। और धृतराष्ट्र हम ही है, मोह भरा होता है हमारे अंदर, लालच भरा होता है कि जो मिलना है भाई हमें ज्यादा मिले या हमारे बच्चों को मिले, ज्यादा मिले, ये मिल जाए इसको, वो मिल जाए। तो यही था, संस्कार की कमी थी दुर्योधन में। तो उसने धृतराष्ट्र ने तो अपनी आंख में पट्टी शुरू से अंधा था वो, तो उसको जो बताया गया, जो उसने अपने मन में घृणा रखी हुई थी, मैंने महाभारत देखी पूरी, तो घृणा रखी हुई थी कि मैं अंधा हूं, बस उसको इस बात का दुख था। जब उसकी वाइफ आई तो उन्होंने भी पट्टी बांध दी। तो जब दोनों ये अंधे हो गए तो ऑब्वियसली परिवार कैसे संभलता। तो फिर वहां पे शकनी मामू आ गए कि मेरे जो बहन है उसके साथ अन्याय हुआ है, तो मुझे अब इसकी पुत्रों को राज्य दिलवाना है। तो वो ऐसे ऐसे बोलते गए, जो अंदर थे वो तो देख नहीं सकते थे, दोनों ही पट्टियां बांध के बैठे हुए थे। तो वो उसने जो भी बताया कि ये मरने लगा है, इसको राज्य देना चाहिए, पांडवों के पुत्र ऐसे ही वैसे, हम भी उसी मतलब सर्कल में फंसे हुए। हमारे सराउंड भी ऐसा ही कुछ है कि हमारा दिमाग सिर्फ अपने घर तक ही सीमित रहता है, अपने परिवार तक। हम देखते ही नहीं है कि भाई ये अगर अगले का बच्चा अच्छा है तो वो डिजर्व करता है हमारे बच्चे। हम अपने के लिए ही प्रे करते हैं और अपने लिए ही कोशिश करते हैं, ये गलत है। मैंने आज ये सीख ली कि नहीं, एक तो हिंदुइज्म भी है एक टाइम पे, पर नहीं, सेम सारा संसार भगवान ने कहा धर्म की दृष्टि में हर किसी में मुझे देखो और अपनी सोच का दायरा बढ़ाओ। और जो भी करना है, जैसे कि पूजा जी ने कहा कि शुद्ध कर्म करने और भगवान को अर्पित करने और ओपन आइज करके सत्संग सुनना और जीवन जीना। हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। ब्यूटीफुल लर्निंग्स एज ऑलवेज किरण जी, ब्यूटीफुली आपने भी अच्छे तरह से अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू अपने विचार रखे बहुत ही अच्छी तरह से। और बिल्कुल सही कहा आपने कि हमें अपना सोच का दायरा बढ़ाना है। एक्चुअली हमें इतनी सी बात भी अगर हमने समझ ली कि यार हमें सोच ही हमारी बहुत लिमिटेड है, एक्चुअली हमें पता नहीं होती ना चीजें, क्योंकि वही बात है, हमारी बुद्धि है लिमिटेड और भगवान बातें बता रहे हैं हमें पीएचडी वाली, तो हमें लगता होगा कैसे, बिना चले हमें लगता होगा कैसे। और जब हम चलते हैं, थोड़ा सा भी चलते हैं, भगवान भर भर के हमारा वेलकम करते हैं। भगवान बोलते हैं एक बार आप चलो तो सही, है ना। वो जो फर्स्ट इनिशिएटिव है ना, हमेशा बोलती हूँ वो फर्स्ट इनिशिएटिव हमने ही करना है। भगवान की तरफ रास्ता दिख रहा है हमें, है ना, भगवान कृष्णा तो हमें बुला रहे हैं, लेकिन वहां पे हमने जाना या नहीं जाना ये चूज तो हमने करना है ना, ये चॉइस हमने लेनी ना। जैसे आज सत्संग है, है ना, तो ये चॉइस तो हमने लेनी ना कि इस सत्संग को हमने अटेंड करना है या नहीं करना, है ना। एक बार मैं भगवद गीता की रीडिंग सुन लेती हूँ, ये माइंड में बात किसने रखनी कि मुझे सुननी ही सुननी है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे भगवद गीता की रीडिंग सुननी ही सुननी है, एक बार सुनना है कि क्या कह रहे हैं भगवान। अब ये चॉइस किसने रखनी, है ना। भगवान तो हमें बुला रहे हैं, फर्स्ट इनिशिएटिव सिर्फ हमें लेना है, बाकी सब भगवान करेंगे, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड। बस पहला कदम हमने चलना है, आप ये याद रखो, पहला कदम मन में रख लो मुझे सत्संग सुनना है ना। जो सत्संग सुन रहे हैं वो मन में रख लो कि जो बातें बताई जा रही है मुझे अपने अंदर अपनानी है, है ना। बार बार सुनते रहोगे ना, उसके लिए आप कम से कम 2-3 घंटे आपको देने पड़ते हैं, है ना। जो स्पिरिचुअलिटी में डिवोशन बोल लो तो उसको देने पड़ते हैं। जब आप 2-3 घंटे देते हो फिर आपको स्पेशल 2-3 घंटे देने की बात नहीं रह जाती, फिर आपकी लाइफ ही इस ट्रैक पे चलने शुरू हो जाती है कि आप सुबह से लेकर रात तक आपका माइंड ऐसे चलता है कि नहीं मुझे सही चलना, सही डिसीजन लेने हैं, सही काम करने, है ना। तो फिर अपने आप ही लाइफ अपने ट्रैक पे आ जाती है और हम वो स्पेशल 2-3 घंटे में नहीं रह जाते, फिर वो 24 घंटे ही हमारे भगवान को समर्पित रहते हैं, है ना। थैंक यू सो मच किरण जी। तो ठीक है फिर फ्रेंड्स, हम भजन की तरफ बढ़ते हैं। आज भजन की टर्न ममता जी की है। ममता जी, आप भजन गा सकते हो। हरी बोल।
हरी हरी बोल। हरी हरी बोल एवरीवन। थैंक यू मोना जी, आज का दिन सच में, इतने दिन से हम वेट कर रहे थे कि भगवत गीता हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो फाइनली वो दिन आज आ ही गया। तो आज भी आपने नया सेशन बहुत ही मतलब अच्छे तरह से, इतनी अच्छी तरह से कराया कि हमें बहुत ही अच्छी तरह समझ आया। मेरी जो लर्निंग बनी है कि धृतराष्ट्र को बताया कि मन में जो हलचल हुई उससे वो लड़ाई बनी, और जो अर्जुन के मन में जो हलचल हुई उसके द्वारा भगवत गीता प्रकट हुई। तो ये अगर हम अपने डे टू डे लाइफ से रिलेट करके चले गए, हमें किसी के लिए राग द्वेष नहीं रखना है, और ना ही हमें भगवान के बताए हुए जैसे धर्म के पर चल के हमने हर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, अपने बच्चों को अपनी फैमिली को एक समान देखना है, जैसे धृतराष्ट्र की तरह नहीं अपने अंदर वो भाव पैदा करने है कि ये मेरा और तेरे वाला भाव, वसुदेव कुटुम्बकम वाला भाव ही हमने रखना है। क्योंकि एक बात तो हम सीख चुके हैं कि जैसे आपने भी बताया कि खाली हाथ आए और खाली हाथ जाए, तो किसके लिए मैं और मेरा तेरा, ठीक है। जब हम उस ईश्वर पर भरोसा करते हैं ना, तो सब कुछ वो प्रोवाइड ही कराते हैं, वही करवाते हैं, और हम अपने आप को एक मान लेते हैं कि नहीं हम कर रहे हैं, हम तो एक मीडियम बन के आए हैं मोना जी। तो सच में वो भगवान की पावर को हम समझ नहीं पाए। तो मैं तो अभी अपने मन में यही सोच ही पढ़ा रहे थे कि हम कहाँ छुपे बैठे थे इतने सालों से कि हमने भगवत गीता का ज्ञान हमने पढ़ा ही नहीं, भगवान की गाई हुई वाणी को हमने पढ़ा ही नहीं, हम इतने साल अपने हमने ऐसे वेस्ट कर दिए। में आप पढ़ रहे हैं, मैं खुद से भी मोना जी रीड कर रही हूँ, एक एक श्लोक जितना मेरे से होता है दो श्लोक मतलब डेली के पढ़ पाती हूँ जो मेरी समझ में आता है। भगवान ने हमें एक माध्यम बना के भेजा है, हमें परिवार, अच्छा परिवार, जैसे हम मिले हमारा ग्रुप बना, भगवत गीता सीख रहे हैं, तो उन्हीं के माध्यम से हो रहा है। तो उसी का धन्यवाद करते हुए हमें किसी के लिए भी मन में ना कोई राग ना द्वेष रखना है, प्रेम भाव से चलना है, तो भगवान भी हमें वैसे ही प्रेम भाव से हमें आगे बढ़ाते जाएंगे, और हमारी बुद्धि में आते हैं जब तो हमसे वही सही काम कराते हैं। तो आज का भजन भी मेरा भगवद गीता के ऊपर ही है। वसुदेवम सुतम देवम कंस चानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरु को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, मन चमन हमारा हरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में, जब शोक मोह से गिर जाए तब गीता वचन हृदय लाए, जब शोक मोह से गिर जाए तब गीता वचन हृदय लाए, क्योंकि क्योंकि युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ घनश्याम तुम्हारी गीता में, नंदलाल तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ। गीता संतों को प्यारी है, गीता संतों को प्यारी है, क्योंकि क्योंकि श्रुति धर्म के अनुसारी है, क्योंकि श्रुति धर्म के अनुसारी है, सारा भव सागर
तरा हुआ सारा भव सागर तरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में जाने क्या जादू भरा हुआ श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में जाने क्या जादू भरा हुआ नंदलाल तुम्हारी गीता में घनश्याम तुम्हारी गीता में हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जाने क्या जादू भरा हुआ नंदलाल तुम्हारी गीता में श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में घनश्याम तुम्हारी गीता में हरी हरि बोल हरी हरि बोल जी
हरी हरि बोल हरी हरि बोल बहुत ही प्यारा भजन गाया आपने बहुत ही आनंद के साथ और हमें भी बहुत आनंद आया आपके भजन को सुनकर उमदा जी बहुत ही आनंद आया थैंक यू सो मच और प्रेयर्स कर लेते हैं फ्रेंड हरे कृष्णा 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 हरे हरे
कृष्णा कृष्णा हरे हरे
राम राम हरे हरे
हरे
कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे हरे
हरे राम 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 हरे 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 हरि बोल एवरीवन हरे हरि बोल घर घर मंदिर जय श्री राधे कृष्णा